السلام علیکم، یہ پارٹ ون ہے ناول جیوش پاور۔ یہ ناول نابینا خواتین حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کرتبہ اوڈیو لائبریری، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو یہ سنتے ہیں پارٹ ون۔ چند باتیں۔ محترم قارئین، سلام مسنون، نیا ناول جیوش پاور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ یہودیوں کی بین الاقوامی تنظیم جیوش پاور نے گو براہ راست پاکی شیعہ کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا تھا، لیکن ان کی کارروائی مسلمانوں کی ایک تنظیم ضرب مسلم اور شکرانی سفارتکارہ کے خلاف تھی، اور شکران حکومت اور ضرب مسلم کی سرکردہ لیڈروں کی نظریں پاکستان سیکرٹ سروس پر ہی پڑی، لیکن عمران نے سرکاری طور پر اس مشن پر کام کرنے سے انکار کر دیا، لیکن غیر سرکاری طور پر صرف جولیا کو ساتھ لے کر جیوش پاور کے خلاف میدان عمل میں نکل آیا۔ اس طرح جولیا کو اس بار اپنی صلاحیتوں کے بھرپور اظہار کا موقع بھی مل گیا، خاص طور پر اس لیے کہ مشن پر روانگی سے قبل جولیا کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آخرکار وہ عمران کو جیت لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس یقین کے پیچھے عمران کی اما بی کا رویہ بھی موجود تھا، جنہوں نے جولیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی بہو بنانے کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ تبدیلی کیوں اور کیسے آئی؟ مجھے یقین ہے کہ قارئین کو یہ کہانی بھی ہر لحاظ سے پسند آئے گی، اور قارئین اپنی آرا سے مجھے بذریعہ خطوط یا ای میلز ضرور متعلق کریں گے، کیونکہ قارئین کی آرا میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہے۔ البتہ ناول کے مطالعے سے پہلے اپنے چند خطوط، ای میلز اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کر لیجئے، کیونکہ دلچسپی کے لحاظ سے یہ بھی کسی طرح کم نہیں ہے۔ واہ کین سے ثاقب علی لکھتے ہیں، میں آپ کے ناول بڑے شوق سے پڑھتا ہوں، ٹائگر میرا پسندیدہ کردار ہے، عمران سے کہیں کہ اسے زیادہ ڈانٹا نہ کرے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ عمران کا شاگرد ہے، لیکن شاگرد کی بھی عزت ہوتی ہے۔ میں ڈر کے خلاف ٹیم بنا کر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول اور ڈکٹا فون کہاں سے ملتے ہیں۔ امید ہے آپ ضرور اس بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ محترم ثاقب علی صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا شکریہ۔ جہاں تک عمران کا ٹائگر کو ڈانٹنے کا تعلق ہے، تو بزرگ کہتے ہیں کہ استاد کی ڈانٹ شاگرد کے فائدے میں جاتی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عمران کی ڈانٹ کی وجہ سے ہی ٹائگر کی کارکردگی روز بروز نکھرتی چلی جا رہی ہے، اس لیے ٹائگر آپ کا پسندیدہ کردار ہے، تو اسے استاد کی ڈانٹ کھانے دیجئے تاکہ وہ مزید کامیابیاں حاصل کر سکے۔ جہاں تک بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول اور ڈکٹا فون کے حصول کا تعلق ہے، تو ایسی چیزیں اگر عام ملنے لگ جائیں تو معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی زندگی عذاب بن جائے گی، اور جہاں تک درد کے خلاف تنظیم بنا کر کام کرنے کا تعلق ہے، تو یہ کام سرکاری اداروں کا ہے، آپ کا نہیں۔ آپ تو تنظیم بنا کر معاشرے میں موجود دیگر سماجی برائیوں کے خلاف کام کریں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ گجرات سے امجد علی چغتائی لکھتے ہیں، آپ کے ناول تو میں عرصے سے پڑھ رہا ہوں، لیکن خط لکھنے کی خصوصی وجہ یہ ہے کہ بڑے طویل عرصے بعد آپ نے زیادہ ضخامت کے ناول لکھنے شروع کیے ہیں، اور یقین کیجئے یہ ناول ہر لحاظ سے شاندار اور پسندیدہ رہے ہیں۔ ٹائگر ان ایکشن خاصا ضخیم ناول ہے، जो बेहद पसंद आया है। इसके बाद सार्ज एजेंसी और सार्ज हेडक्वार्टर एक साथ मिले तो और भी ज्यादा खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि ये भी खासे जख्म थे। जबकि इससे कबल आप तवील अरसे से कम दखामत के नॉवेल लिख रहे थे, गो वो नॉवेल भी बेहद शानदार थे, लेकिन जख्म नावलों में आप खुलकर मजा लिखते हैं, एक्शन और सस्पेंस भी ज्यादा होता है, इसलिए जख्म नावल हमें ज्यादा पसंद आते हैं। आप कर्ण फ्रेडी और मेजर पर मौत पर नावल लिखने का वादा तो कर लेते हैं, लेकिन अभी तक आपने वादा वफा नहीं किया। इन किरदारों पर मुश्तका नावल भी खासा जख्म लिखें, उम्मीद है आप जरूर ख्याल रखेंगे। मोहतरम अमजद अली चुगताई साहब, खत लिखने और नावल पसंद करने का बेहद शुक्रिया। आपकी बात दुरुस्त है कि जख्म नावलों में मजा और एक्शन भरपूर अंदाज में सामने आता है, लेकिन मौजूद महंगाई और खुसूसन कागज की महंगाई ने जख्म नावल लिखना और शाया करना खासा मुश्किल बना दिया है। लेकिन इस महंगाई के बावजूद मेरी कोशिश होती है कि नावलों में तशंगी महसूस ना हो, इसलिए बास कहानियां खुद ब खुद जख्म नावलों में ढल जाती हैं। कर्ण फ्रेडी, मेजर परमोद और इमरान का मुश्तरका नावल इंशाल्लाह जल्द ही आपके हाथों में होगा। उम्मीद है आप आइंदा भी खत लिखते रहेंगे। अब इजाजत दीजिए, वस्सलाम, मजर कलीम MA। सूरज काफी चढ़ाया था, लेकिन जूलिया अपने फ्लैट के बेडरूम में अपने बेड पर ऊंधे मुंह पड़ी हुई आहिस्ता आहिस्ता सिसकियां ले रही थी। इसका पूरा जिस्म इस तरह थरथरा रहा था जैसे इसे लरसने का तेज बुखार चढ़ाया हो। इसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे, जो बिस्तर में ही जज्ब होते जा रहे थे। काफी देर से इसकी यही हालत थी कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी, लेकिन जूलिया ने इसकी तरफ सिरे से तवज्जो ही ना की। वो इसी तरह पड़ी सिसकियां लेती रही। कुछ देर तक घंटी बजने के बाद फोन खामोश हो गया, लेकिन जूलिया की हालत में कोई तब्दीली ना आई। यूं लग रहा था जैसे जूलिया ने उठने और कोई काम करने से तौबा कर ली हो। फिर यक लग वो एक झटके से उठी और उसने सरहाना उठाकर इस तरह जोर जोर से अपने बेल्ट पर मारना शुरू कर दिया जैसे किसी की पिटाई कर रही हो। इसकी आंखें सूजी हुई थीं, चेहरे पर आंसुओं ने बह बह कर लकीरें डाल दी थीं। इसका चेहरा वीरान नजर आ रहा था। वो मुसलसल सरहाना बेल्ट पर मारे जा रही थी। यूं लगता था जैसे इसका नर्वस ब्रेक डाउन हो गया हो। फ्लैट में चूंकि वो अकेली थी, इसलिए इसे संभालने वाला भी कोई ना था। अचानक फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी, तो इस बार जूलिया ने अपना रुख मोड़ा और इसके साथ ही इसने पूरी कुव्वत से सरहाना फोन पर मार दिया। मैंने नहीं सुनना कोई फोन, मैंने नहीं सुनना, बस मैंने कह दिया मैंने नहीं सुनना फोन, जूलिया ने यक लक हलक के बल चिखते हुए कहा। और उसके साथ ही इसने इस तरह जोर जोर से फोन पर सरहाना मारना शुरू कर दिया जैसे चंद लम्हे पहले वो बेल्ट के सिरे पर सरहाना मार रही थी। लेकिन फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी कि अचानक जूलिया ने सरहाना घुमाकर साइड दीवार पर मारा और इसके साथ ही इसने एक झटके से रिसीवर उठा लिया। मैंने नहीं सुनना कोई फोन, मैं कह रही हूँ मैंने नहीं सुनना, बस मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने नहीं सुनना फोन, जूलिया ने यक लख ऊंची आवाज में चीखते हुए कहा। इसकी आवाज में रोने का तासुर बेहद नुमाया था। वो इस तरह चीख रही थी जैसे इसके हलक के अंदर चीखे मारने की कोई मशीन नस्ब कर दी गई हो। इसके साथ ही रुक रुक कर वो ये भी बोल रही थी कि मैंने नहीं सुनना फोन। जूलिया जूलिया, मैं सालेहा बोल रही हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? जूलिया जूलिया, दूसरी तरफ से सालिहा की भी चीखती हुई आवाज सुनाई दी। मैंने नहीं सुनना किसी का फोन, मैंने नहीं सुनना, मेरा पीछा छोड़ दो, जूलिया ने इसी तरह चीखते हुए कहा। उसके साथ ही उसने रिसीवर कैडल पर पटका और एक बार फिर ओंधे मुंह गिर कर इस तरह रोने लगी कि पहले इसके मुंह से सिसकियां निकल रही थीं, लेकिन अब इसके मुंह से लगातार हिचकियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। काफी देर तक इस तरह जोर जोर से हिचकियां लेने के बाद इसकी हिचकियों में भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो गई और साथ ही इसके थर थराते हुए जिस्म में भी हरकत कम होती चली गई और चंद लम्हों बाद वो खामोश हो गई। लेकिन वो वैसे ही औंधे मुंह बेड पर पड़ी हुई थी। अभी न जाने इस हालत में इसे कितनी देर गुजरी थी कि यकलक कॉल बेल की तेज आवाज सुनाई देने लगी। इसके साथ ही इस तरह दोनों हाथों से दरवाजा खटखटाया जाने लगा जिसे आने वाले को अंदर आने की बहुत जल्दी हो। जूलिया एक झटके से उठी, इसके होंठ बीछे हुए थे। बेड से उतरकर वो तेज तेज कदम उठाती हुई बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। इसके पाँव में जूते भी नहीं थे। कौन है? जूलिया ने डोर फोन का रिसीवर हुक से उठाकर सख्त लहजे में कहा। जूलिया, मैं सालिहा हूँ, दरवाजा खोलो जल्दी प्लीज, सालिहा ने तेज लहजे में कहा। मैं नहीं खोलती दरवाजा, तुम जाओ, खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैं नहीं खोलती दरवाजा, जूलिया ने यकलक चीखते हुए कहा। प्लीज जूलिया, मुझे तुमसे जाती काम है, प्लीज मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो प्लीज, दूसरी तरफ से सालिहा ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। मुझसे किसी को कोई काम नहीं है, मैं नहीं खोलती दरवाजा, जाओ तुम चली जाओ, जूलिया ने रोते हुए लहजे में कहा। और इसके साथ ही इसने एक झटके से रिसीवर को वापस हुक पर लटका दिया। लेकिन इसी लम्हे दरवाजा इस तरह पीटा जाने लगा जिसे दोनों हाथों से पीटा जा रहा हो और जूलिया ने इस तरह गुस्से अंदाज में आगे बढ़कर दरवाजा खोला जिसे दरवाजा खोलते ही वो दरवाजा पीटने वाली को गोली मार देगी। लेकिन दरवाजा खुलते ही सालिहा ने इसे दोनों बाजू में ले लिया। क्या हुआ जूलिया, तुम्हें क्या हुआ है, ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है, मुझे बताओ प्लीज, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझे बताओ, सालिहा ने इसे बाजू में लेकर बड़े प्यार भरे अंदाज में इसे भींचते हुए कहा। तुम सब झूठ बोलते हो, तुम मेरे कुछ नहीं हो, तुम भी झूठ बोल रही हो, तुम मेरी बहन नहीं हो, यहाँ मेरा कोई नहीं है, मैं बदकिस्मत यहाँ अकेली हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है, भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, तुम सब झूठ बोलते हो, जूलिया ने बेख्तियार रोते हुए कहा। इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे, इसका पूरा जिस्म एक बार फिर कांपने लग गया था। मत रो जूलिया, क्या हो गया है तुम्हें, तुम मेरी बहन हो, खुदा की कसम तुम मेरी बहन हो, मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है, तुम मेरी बहन हो जूलिया, ये क्या हो गया है तुम्हें, सालिहा ने इसे और ज्यादा लिपटाते हुए कहा तो जूलिया के मुंह से रोने की आवाजें निकलना बंद हो गई, लेकिन इसका जिस्म इसी तरह कांपता रहा। बस मत रो जूलिया, बस करो, तुम मेरी बहन हो, हम सब तुम्हारे हैं जूलिया, हम सब, सालिहा ने इसकी पुश्त को हाथ से थपथपाते हुए कहा। काश ऐसा होता, काश मेरा भी कोई होता, मैं इस भरी दुनिया में अकेली हूँ, ना यहाँ पाकिस्तान में मेरा कोई है और ना ही स्विट्जरलैंड में, मैं कहाँ जाऊँ, अब इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, जूलिया ने रोते हुए कहा। नहीं, तुम गलत समझ रही हो, हम सब तुम्हारे साथी हैं, तुम मेरी बहन हो, मेरी सगी बहन से भी ज्यादा मुझे प्यारी हो, सालिहा ने एक बार फिर इसकी पुश्त को हाथ से थपकते हुए कहा। तो चंद लम्हों बाद जूलिया इससे अलीहदा हो गई। इसने दोनों हाथों से अपने चेहरे पर बहने वाले आंसू पोंछना शुरू कर दिए, लेकिन इसका जिस्म कांप रहा था। आओ मैं तुम्हें बेड पर लिटा दूं, आओ, सालिहा ने कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बैठो, मैं मुंह धोकर आती हूँ, जूलिया ने आहिस्ते से कहा और फिर मुड़कर तेजी से दौड़ती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सालिहा ने मुड़कर दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर आकर वो ड्राइंग रूम में बैठ गई, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी के तासलात वाजह तौर पर मौजूद थे। इसे जूलिया की हालत देखकर अंदाजा हो गया था कि जूलिया पर डिप्रेशन का शदीद तरीन दौरा पड़ा था। ये तो इसने आज दोपहर लंच इकट्ठा करने के लिए जूलिया को फोन किया, लेकिन जूलिया ने जब काफी देर तक फोन अटेंड ना किया तो पहले तो वो यही समझी कि जूलिया आज देर तक सो रही होगी, लेकिन फिर इसे ख्याल आया कि जूलिया तो सुबह सवेरे उठकर बाकायदा पाबंदी से नमाज पढ़ती है, बल्कि काफी देर तक कुरान मजीद की तिलावत भी करती है और इसका तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ती है। फिर नाश्ता तैयार करके नाश्ता करती है और फिर टीवी ऑन करके वो सुबह के खुसूसी प्रोग्राम देखती है। वो सुबह उठने के बाद दोबारा सोने की आदी तो नहीं है, इसलिए इसने इसे दोबारा फोन किया, लेकिन जब फिर भी फोन अटेंड ना किया गया तो सालिहा को तश्वीश हुई और कुछ देर बाद इसने एक बार फिर ट्राई की तो इस बार काफी देर बाद जूलिया ने रिसीवर उठा लिया, लेकिन जो कुछ इसने कहा और जिस अंदाज में कहा इससे सालिहा इस कदर परेशान हुई कि वो सब कुछ छोड़कर अपनी रिहाइश गाह से कार लेकर एक लिहाज से उड़ती हुई यहाँ पहुंची और यहाँ आकर जो कुछ इसने देखा था इससे इसका जहन धमाकों की जिद में आ गया था। वो ड्राइंग रूम में बैठी यही सोच रही थी कि जूलिया का मुस्तकिल इलाज कैसे किया जा सकता है कि चंद लम्हों बाद जूलिया बाहर आई तो इसने न सिर्फ मुंह हाथ धो लिया था बल्कि बालों को ब्रश भी कर लिया था और सालिहा उठकर खड़ी हो गई। आओ आओ जूलिया, तुमने नाश्ता कर लिया है या नहीं, सालिहा ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं किया, लेकिन अब मैंने करना भी नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, बल्कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं एक बार फिर चीखे मारूं, जूलिया ने कहा और सालिहा के सामने सोफे पर बैठ गई। रोने की वजह से इसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा भी नॉर्मल ना था। सबसे ज्यादा तश्वीशनाक जूलिया की आंखों के अंदर से झलकने वाली वीरानी थी। इधर मेरे पास सोफे पर आकर बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या किसी ने कोई बात की है, सालिहा ने कहा। तो जूलिया उठकर इसके साथ सोफे पर बैठ गई। देखो सालिहा, बेहतर कि तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम यहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारे वालदेन, बहन भाई और रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, वो सब तुम्हारा खून है, तुम्हारे अपने हैं, लेकिन तुम खुद बताओ कि मेरा यहाँ कौन है, कोई है जो मेरा दुख बांटेगा, जो मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखेगा, तुम लोग हो लेकिन तुम मेरे प्रोफेशनल साथी हो, मेरे अपने नहीं हो, ये दोस्त है कि तुम मुझसे बेहद मुखलिस हो, मुझसे मोहब्बत भी करते हो, मुझे इज्जत और एहतराम भी देते हो, लेकिन ये सब मेरे लिए फजूल है, मुझे बताओ कि मैं अब कहाँ जाऊँ, वहाँ स्विट्जरलैंड में भी मेरा कोई नहीं रहा और ना ही मैं अब वहाँ जा सकती हूँ, वो माशरा अब मेरे लिए काबिले नफरीन बन चुका है, मैं मुसलमान हूँ, वहाँ भी मुसलमान होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं एक बार वहाँ हो आई हूँ, मेरा एक कजन भी यहाँ आया था, मैंने पाकिस्तान को अपना वतन समझ लिया था, लेकिन मैंने देखा और मैंने महसूस किया है कि सब यहाँ अजनबी हैं, जूलिया ने मुसलसल बोलते हुए कहा, जबकि सालिहा खामोश बैठी रही। वो जूलिया को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना चाहती थी, क्योंकि इसे मालूम था कि जूलिया जिस कदर ज्यादा बोलेगी इसका डिप्रेशन इतना ही कम होता चला जाएगा। क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? क्यों तुम्हारे अंदर ये सोच पैदा हुई है? रात तो मैं तुम्हें अच्छी तरह भली छोड़कर गई थी, सालेहा ने कहा। तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी और फिर काफी देर तक इस तरह हंसती रही कि सालेहा को शक होने लगा कि जूलिया का जहनी तवाजन खराब हो चुका है। लेकिन फिर इससे पहले कि वो इस बारे में कोई बात करती, जूलिया ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। तुम वाकई मुझे अच्छी भली छोड़कर गई थी। फिर मैं टीवी देखती रही, फिर हज़े मामूल सुबह उठने के लिए अलार्म लगाकर मैं सो गई। सुबह अलार्म बजने पर जब मैं बेदार हुई तो मैं अपने आप को फ्रेश महसूस न कर रही थी। मैं यही समझी कि रात देर तक जागने की वजह से ऐसा हुआ है। बहरहाल मैंने नमाज पढ़ी और हज़े मामूल काफी देर तक कुरान तिलावत कुरान मजीद करने के बाद मैंने नाश्ता तैयार करने के बारे में सोचा ही था कि मुझे अचानक इमरान का ख्याल आ गया। मेरा दिल चाहा कि मैं इससे बात करूं। मैंने अपने आप को रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन न जाने इस ख्याल ने मुझे क्यों बेबस कर दिया। बहरहाल मैंने रिसीवर उठाया और इमरान के फ्लैट के नंबर ट्रेस कर दिए। वहां सुलेमान ने फोन अटेंड किया और मेरे पूछने पर इसने बताया कि इमरान सुबह की नमाज पढ़कर और वर्जिश करके वापस आया ही था कि अम्मा बी का फोन आ गया था। इसकी बहन सुरैया कोठी पर आई हुई थी। चुनांचा इमरान अपनी बहन और अम्मा बी से मिलने वहां चला गया। मैंने ये सुनकर रिसीवर तो रख दिया, लेकिन मुझे अचानक ख्याल आया कि इमरान की अम्मा भी हैं, बहन भी हैं, मगर मेरा यहाँ कौन है? मैं किस से मिलूं? इमरान अगर फोन पर मिल भी जाता तो इस अंदाज में बात करता कि मेरे जज्बात ही कुचले जाते। बस मेरा दिल रोने के लिए तड़प उठा। मुझे महसूस हुआ कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। और फिर ये सब कुछ मेरे जहन और हवास पर छा गया और मैं बेड पर गिरकर रोती रही। मेरा दिल भर आया था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं किसी लकोदक सहरा में अकेली हूँ, ऐसे सहरा में जिसमें कोई पनागाह नहीं है, कोई वारिस नहीं है, बस मैं अकेली लावारिस वहाँ हूँ। फिर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी जंगल में भाग रही हूँ और चारों तरफ से दरिंदे मुझे भंभोरने के लिए मुझ पर लपक रहे हों और मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मैंने अपने आप को संभालने की बेहद कोशिश की, लेकिन न जाने क्या कैफियत मुझ पर तारी हो गई कि मेरी हालत खराब से खराब तर होती चली गई। जूलिया ने जवाब देते हुए कहा, तुम तवील अरसे से अकेली रह रही हो, पहले तो तुम्हारी ऐसी कैफियत नहीं थी, अब ऐसी क्या बात हो गई है? मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, सालेहा ने कहा। वो मैंने एक ख्वाब देखा था, फिर जागते में ये ख्वाब एक बार फिर मेरे जहन पर उजागर हुआ और इस ख्वाब की वजह से मुझे अकेलेपन का एहसास होने लग गया और फिर मेरी कैफियत बदलती चली गई। जूलिया ने होंठ चबाते और सर को आहिस्ता आहिस्ता झटकते हुए कहा तो सालिया चौंक पड़ी, क्योंकि जूलिया के चेहरे की कैफियत एक बार फिर बदलना शुरू हो गई थी। मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, सालिया ने इसकी कैफियत देखते हुए कहा। ओ सॉरी, मुझे ख्याल ही ना रहा, मैं बना लाती हूँ, जूलिया ने चौंक कर उठते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं गैर तो नहीं हूँ जूलिया, मैं बना लाती हूँ चाय, तुम बैठो, सालेहा ने कहा। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ किचन में चलती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो, जूलिया ने उठते हुए कहा। तो सालेहा ने असबात में सर हिला दिया। चाय के साथ सालेहा ने नाश्ते का हल्का फुल्का सामान भी तैयार कर दिया। क्योंकि जूलिया ने नाश्ता नहीं किया था और फिर वो ट्रॉली लेकर दोबारा ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। चाय पीने और हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद जूलिया की हालत मुकम्मल तौर पर संभलती चली गई। तुम्हारा बेहद शुक्रिया सालेहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें बर वक्त भेज दिया, वरना ना जाने मेरा क्या होता, शायद मैं दीवारों से सर फोड़ कर मर जाती, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सालिया बेख्तियार हंस पड़ी। ऐसा लड़कियों के साथ अक्सर हो जाता है। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए जूलिया, सालिया ने हंसते हुए कहा। तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। ओ तो तुम समझ रही हो कि मुझ पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ा है, ये बात नहीं है, जूलिया ने कदरे गुस्से लहजे में कहा। तो सालिहा मजीद खिलखिलाकर हंस पड़ी। हिस्टीरिया नहीं, डिप्रेशन का दौरा पड़ा है तुम्हें, और डिप्रेशन की ये कैफियत अपने आप को अकेला समझने की वजह से पैदा हुई है। जब तुम्हारा एक जीवन साथी होगा तो अकेलेपन की सोच खत्म हो जाएगी। गो तुमने मुझे वो ख्वाब नहीं बताया जिसकी वजह से तुम पर असल में ये कैफियत तारी हुई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि वो कैसा ख्वाब होगा, सालिहा ने कहा। अच्छा चलो तुम बताओ कैसा ख्वाब था वो, जूलिया ने चैलेंज करते हुए कहा। तो सालिया एक बार फिर हंस पड़ी। इमरान से शादी ना होने का ख्वाब, और क्या हो सकता है, सालिया ने कहा। तो इस बार जूलिया भी हंस पड़ी। नहीं तुम उलट सोच रही हो, इमरान से मेरी शादी ना होने का ख्वाब नहीं था, बल्कि इमरान की शादी का ख्वाब था, जूलिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे साथ, सालिहा ने चौंक कर कहा। नहीं यही तो असल मसला है, जूलिया ने बेसाख्ता कहा। तो सालिहा एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा तो फिर किसके साथ, सालिहा ने हंसते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, इसकी कोई रिश्तेदार लड़की होगी, मैंने देखा कि इमरान की किसी के साथ शादी हो रही है, इमरान दूल्हा बना खड़ा है, इमरान की अम्मा भी खुश हैं, और इसके डैडी भी इमरान के साथ मिलकर कहके लगा रहे हैं। मैं अंदर दाखिल होती हूँ और मुझे अचानक ये सब कुछ देखकर गुस्सा आ जाता है, और मैं इमरान की अम्मा भी से शिकवा करती हूँ, तो वो मुझे ये कहकर सख्ती से झटक देती हैं कि तुम इस काबिल कहाँ हो कि तुमसे इमरान की शादी की जाए। मैं इमरान की तरफ देखती हूँ तो इमरान मुंह फेर लेता है, फिर मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो तुम सब भी मुंह फेर लेते हो, और मैं जूलिया की आवाज डूबती चली गई। अरे अरे ये ख्वाब है, ये सब तुम्हारी सोच का शाकसाना है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम अब इमरान को मजबूर कर देंगे, तुम फिक्र मत करो, सालिहा ने एक बार फिर जूलिया की कैफियत को बदलते देखकर इसके कांधे पर थपकी देते हुए कहा। नहीं तुम इमरान से कोई बात नहीं करोगी, वो सख्त कठोर आदमी है, इसे उल्टा मेरा मजाक उड़ाने और मेरे जज्बात कुचलने का मौका मिल जाएगा, प्लीज तुम किसी से मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगी, जूलिया ने चौंक कर और मिन्नत भरे लहजे में कहा। नहीं जूलिया, अब मामला इस नहज पर पहुंच गए हैं कि अब इसका कोई हल होना चाहिए, इमरान से नहीं तो हम चीफ से बात करेंगे, सालिहा ने तेज लहजे में कहा। चीफ तो खुद पत्थर है, वो तो इमरान की ही हिमायत करेगा, और वो सेक्रेट सर्विस का कानून कि कोई एजेंट शादी नहीं कर सकता, अगर शादी करेगा तो इसे फील्ड से हटा दिया जाएगा, इसलिए वो कभी नहीं मानेगा, जूलिया ने कहा। कानून भी तो लोगों का बनाया हुआ है, इसे बदला भी जा सकता है, दूसरी एजेंसियों में शादीशुदा एजेंट भी तो होते हैं, सालिहा ने कहा। ये नॉवेल जेविश पावर का बकिया हिस्सा पार्ट 2 में समाप्त फरमाएं।